वो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, उनका तीन बार प्रदक्षिणा किए और वहां से मधुबन की ओर चल पड़े। इधर नारद मुनि ध्रुव महाराज को उपदेश देने के बाद सीधे महाराज उत्तानपाद के पास गए। उत्तानपाद महाराज बड़े दुखी थे, उदास हो गए थे और चिंतित थे। और जब नारद मुनि पहुंचे तो उन्हें सत्कार किया, आसन पर बैठाया, चरण धोया और तत्पश्चात नारद मुनि जानते हुए पूछे, आप बहुत दुखी लग रहे हो, बात क्या है, चिंतित लग रहे हो, बात क्या है? तो महाराज उत्तानपाद ने बताया कि मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, इस मेरी पत्नी के कहने पर आकर मैंने इस मासूम बच्चे को, जो मेरे प्रेम का प्यासा था, अफेक्शन, एक प्रीति का, उसकी मैंने अवहेलना कर दी और इस तरह से कटु शब्द मेरी पत्नी के कहने पर भी मैंने उसे कुछ कहा नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। अब मुझे ये नहीं मालूम वो कहां है बेचारा, क्या सचमुच में पूर्ण रूप से सुरक्षित है या नहीं, जीवित है या नहीं, इसीलिए मैं चिंतित हूं। तो नारद मुनि ने कहा कि क्योंकि ध्रुव पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेने गया है, वो सुरक्षित रहेगा ही, कोई चिंता नहीं, उसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेता है तो वो निश्चिंत हो जाता है, वही एक निश्चिंत होने का तरीका है, पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेना। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। और इस तरह से महाराज उत्तानपाद को कहते हैं कि न केवल वो वापस लौटेगा वो सुरक्षित है, बल्कि जब वापस वो लौटेगा तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैल गया होगा, आपका यश, आपकी कीर्ति वो बढ़ाएगा, इस वंश की कीर्ति को बढ़ाएगा, आप निश्चिंत रहे। और इस तरह से कहकर नारद मुनि वहां से चल पड़ते हैं। फिर भी महाराज उत्तानपाद बड़े उत्सुकता से, तीव्रता से, साथ साथ उदासी के साथ ध्रुव महाराज की राह देखते रहते हैं। इधर ध्रुव महाराज, जैसे कल हमने चर्चा की, मधुबन में जाते हैं और न केवल अपने गुरु के बताए पथ पर बड़ी तीव्रता से उसको उतारते हैं अपने जीवन में, उनकी आज्ञा को, बल्कि इतनी संयम के साथ, आत्मसंयम के साथ इतनी तीव्रता को बढ़ाते हैं उस भक्ति की, तपस्या के द्वारा, कि जैसे हमने कल चर्चा की, पूरे ब्रह्मांड में उसका असर पड़ने लगता है। और कल हमने थोड़े विस्तृत रूप से तपस्या के बारे में चर्चा की, इस प्रकार से तपस्या का उद्देश्य है अपने अस्तित्व की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, मिथ्या अहंकार की शुद्धि। बहुत सरल उपाय, भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन, नाम का जप और प्रसाद सेवन और शिव विग्रह का सेवन। नारद मुनि भक्ति की व्याख्या, भक्ति की परिभाषा एक इनडायरेक्ट तरीके से भी करते हैं। एक जगह पे आराधितो यदि हरि ही तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। बहुत सुंदर से कहते हैं, आराधितो यदि हरि, अगर आप हरि की आराधना कर रहे हो तो तपसा ततः किम, फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है, अलग से कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं अगर आप हरि की आराधना कर रहे हो। न आराधितो यदि हरि, और अगर हरि की आराधना नहीं कर रहे हो तपसा ततः किम, फिर तपस्या करके क्या फायदा। कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी तपस्या क्या है, हरि की आराधना करना। अगर हरि की आराधना कर रहे हो तो दूसरे कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं अलग से, और हरि की आराधना नहीं कर रहे हो तो हिरण्यकशिपु जैसे एक दिव्य युग तक भी तपस्या करो, या 100 साल तक, सहस्र साल तक भी तपस्या करो, फिर भी कोई तपस्या कोई फायदा नहीं। तो हरि की प्रसन्नता सबसे बड़ी तपस्या है। किस तरह से भगवान को सुनुष्ठित से धर्म ससम सिद्धिर हरितोषणम, किस तरह से भगवान को प्रसन्न करेंगे, और हर एक युग में प्रसन्न करने का तरीका अलग अलग। कृते अध्यायते विष्णु त्रितायाम यजतोमुखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृष्ण वर्णम तुषा भागवत के 11वें स्कंद में नवयुगेंद्र से जब महाराज निमि प्रश्न पूछते हैं तो उसके उत्तर में करभाजन ऋषि कहते हैं द्वापर के अंत में जब कलियुग की शुरुआत होती है तो भगवान का रूप कैसा होता है, उनको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायी यजंती ही सुमेधसा। बुद्धिमान व्यक्ति कैसे भगवान को प्रसन्न करेगा, यज्ञ संकीर्तन प्रायी। संकीर्तन दो मतलब होते हैं संकीर्तन के, सम्यक कीर्तन संग में आकर कीर्तन करना, और संकीर्तन का दूसरा मतलब है परफेक्ट कीर्तन, शुद्ध कीर्तन, मतलब पूर्ण रूप से भगवान को प्रसन्न करने मात्र हेतु कीर्तन, वो संकीर्तन, दैट इज परफेक्ट कीर्तन। और ये सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में, ये सबसे बड़ी तपस्या है। कली का व्हाट इज द स्ट्रेटजी, कली बहुत, उसे मालूम है कि कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। हर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में और कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हरि का नाम लो, संकीर्तन करो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने खुद, युगावतार ने खुद दिखा दिया है। पर फिर भी कली इतना होशियार है कि कली का एक स्ट्रैटेजी होता है कैसे लोगों को इससे दूर रखे। कली मतलब कलह, झगड़ा और दांभिकता, क्वारल एंड हिपोक्रेसी, दीज आर द टू सिम्टम्स ऑफ कली। कली के दो लक्षण हैं। तो ये दो लक्षण का मूल जड़ क्या है, क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा, छोटे छोटे छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि संकीर्तन, संग में आना, संग में आ गए तो कली का असर चला जाएगा। लोग अगर संग में आके कीर्तन करे तो कली का वहां प्रवेश नहीं है, तो किसी ना किसी तरह से लोगों को दूर रखता है, अकेले अकेले रहो चलेगा। कैसे, भूरिजन प्रभु अपने पुस्तक में बहुत अच्छा समझाते हैं कली का कैसे काम करता है। प्रथम स्कंद में इसका वर्णन है। वैदिक संस्कृति का निर्माण ऐसा है कि लीडर, देर इज ए लीडर एंड देन देर इज ए फॉलोअर, एक अधिकारी है और उसके नीचे उसके अनुगत जो अनुयायी जो लोग हैं, और जो अधिकारी है वो अपने अनुयायी के संरक्षण करता है, और जो अनुयायी है वो अपने अधिकारी के ऊपर निर्भर रहते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, सबसे बड़ा लीडर भगवान। चेतनश्चेतनानाम नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले एक ही व्यक्ति हैं, जिनके अंदर वो शक्ति है सबका संरक्षण कर सके, प्रोटेक्शन एंड शेल्टर, आश्रय और संरक्षण एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो है कृष्ण। तो कृष्ण सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं, और उनके प्रतिनिधित्व जो करते हैं, देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, माता पिता भगवान के प्रतिनिधि हैं, पति भगवान के प्रतिनिधि माना जाता है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न सस्यात् न पतिम न सस्यात् नमो चाहिए तत् समुपेत मृत्युम। तो इनका कर्तव्य है कि उनके नीचे जितने सारे उनके उनके ऊपर जो निर्भर हैं, उनका संरक्षण करना, उनको आश्रय देना। किनका आश्रय? खुद क्या आश्रय दोगे? खुद क्या संरक्षण करोगे? उनको अपने उदाहरण से और अपने वचनों से भगवान का आश्रय देना, जैसे सुनीति ने किया। ये असली मां है। बोली, बेटे मैं क्या तुम्हें संरक्षण दे सकती हूं? संरक्षण देने वाला और सचमुच में आश्रय देने वाले तो भगवान। अब हरि का शरणागत हो जाओ। ये माता है। तो इस तरह से ये हरेक का कर्तव्य, हरेक जो अधिकारी है उस स्तर पर है, उनका कर्तव्य यही है कि हर व्यक्ति को किस तरह से पूर्ण रूप से भगवान की हरि भक्ति, हरि भजन, आराधितो यदि आराधितो हरि, हरि की आराधना कैसे कराएं आश्रय लेने और पूर्ण रूप से निर्भर होने में। तो कली का काम क्या है? अधिकारी के व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां डाल देना। कली ने क्या किया? एक ब्राह्मण के द्वारा प्रवेश किया कलियुग। सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। कैसे? अहंकार हो गया उसे और कहने लगा, ये राजा परीक्षित ये क्या है? ये तो क्षत्रिय, क्षत्रियों को क्या बोलते हैं, ब्राह्मण के घर के द्वार पर कुत्ते जैसे खड़े होना चाहिए। आज वो हमारे सर पर चढ़ के आया। और इस तरह से उसने कह दिया, शाप दे दिया। और जब ऐसे क्षत्रिय चला गया, एक महान शुद्ध भक्त, तो फिर राजा चला गया तो प्रजा का संरक्षण कैसा करेगा? और तब कली सबको पकड़ सका हो। जब तक परीक्षित महाराज थे तब तक ये चार चीज जो थी, कली प्रवेश नहीं कर पाया था उधर। तो परीक्षित को हटाने का तरीका क्या था? अधिकृत व्यक्ति के अंदर, अधिकृत व्यक्ति जो अधिकारी उसके अंदर थोड़ा कमियां डाल देना, कुछ दोष डाल देना। दोष डाल दिया तो लोगों को अधिकारी के प्रति जो विश्वास है चला जाता है। और कली उनके कान में कहता है, देखा तुम्हारा शोषण हो रहा है, ये अधिकारी व्यक्ति अधिकारी अयोग्य है। इसीलिए इधर इज ए कैटरैक्ट इन द आई, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द कैटरैक्ट प्लक आउट द आई। छोड़ दो, अधिकारियों को शरण ही नहीं जाना, स्वतंत्र हो जाओ। ये कली का स्ट्रेटजी है, स्वतंत्र हो जाओ। तो हर एक व्यक्ति अपना स्वतंत्र जीना चाहता है। और जब स्वतंत्र हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कि ग्रुप में रहते, कभी कभी हाथी जंगल में भी एक ग्रुप में रहते हैं, पर अकेले चले जाते हैं बाघ पकड़ लेता हूं। तो इस तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं लोग। माता पिता से बच्चे स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं, पत्नी जो है पति से स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं। कुछ भी एक कारण दोष एक्चुअली दिखता है ये दोष। और इसीलिए मैं कोई अधिकारी को स्वीकार नहीं करना चाहता हूं। आई सिंपली वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। आई एम माई ओन अथॉरिटी। इस तरह से कली, वो जो सिस्टम है, एक सांस्कृतिक पारंपरिक जो प्रथा है, उससे उसे तोड़ देता है। और एक बार वो टूट गया, फिर निश्चित रूप से जब अधिकारी व्यक्ति के नीचे हम लोग नहीं है तो दो समस्या आती है। एक चिंता, क्योंकि अब अपने आप का संरक्षण आश्रय हमको खुद करना पड़ेगा। तो निराश्रय होने के कारण चिंता आ जाती है। हमेशा चिंतित रहते हैं कलयुग के लोग। कलयुग का लक्षण है हर एक व्यक्ति फुल ऑफ एंजाइटी, टेंशन, फियर, वरी। स्वाभाविक है ये, देखिए आप कहीं भी। और दूसरा लोनलीनेस, अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि आश्रय नहीं है, संरक्षण नहीं है। तो कलि कहता है कोई चिंता नहीं, उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, भूल जाओ, इंटॉक्सिकेट योर सेल्फ एंड फॉरगेट इट। तुम्हारी समस्या है क्या? अकेलापन महसूस हो रहा है, चिंता है, कोई चिंता नहीं, थोड़ा पी लो, सो जाओ या टीवी के सामने बैठ जाओ। भूलना चाहता है आदमी अपनी समस्या को, तो भूलने का अलग अलग तरीका है। उनको मालूम है समय बर्बाद हो रहा है, पर फिर भी समझता नहीं है, फंस जाता है। मतलब व्यक्ति भूलना चाहता है, क्या लोगों को मालूम नहीं पीना बुरा है या ड्रग्स लेना ठीक नहीं है? क्यों लेना चाहते हैं? पीपल वॉन्ट टू जस्ट इंटॉक्सिकेट देमसेल्स एंड फॉरगेट द मिजरीज ऑफ लाइफ, भूलना चाहते हैं, पर फिर से वो याद आता है, फिर से और लेना, इस तरह से नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से कली का प्रभाव पूरा आ सकता है। और उसका विरुद्ध है संकीर्तन। संकीर्तन में क्या होता है? वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, द सुप्रीम अथॉरिटी, द सुप्रीम शेल्टर, द सुप्रीम प्रोटेक्टर, उनके प्रतिनिधि के द्वारा मार्गदर्शन करते हुए हम भगवान का आश्रय लेते हैं। और जब भगवान का आश्रय ले देते हैं, जैसे मैंने चर्चा किया कल, मेरा खुद का अनुभव है, एक भक्त है हमारे मंदिर में, बहुत ही बड़े बैंक के सीईओ हैं, वो ऊंचे, बहुत ऊंचे स्तर पर हैं वो, और वो बता रहे थे कि मैंने कई बार निर्णय लिया कि मांसाहार, नशा, जुआ, व्यभिचार इत्यादि मैं छोड़ूंगा। उस कोई सेमिनार में गए जहां वेजिटेरियनिज्म के ऊपर था, ये था, वो सब अटेंड किए। उसके बाद न्यू ईयर आया, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, चलो चारों सब दोस्तों ने मिला, जो भी सेमिनार में अटेंड किए थे, सात आठ लोग, सब लोगों ने प्रण लिया कि ये सब उल्टा सीधा चीज बंद। चार महीने तक किए, चार महीने के बाद चारों सातों लोग एक पार्टी में गए और स्वाहा हो गया उसका, उनके रेजोल्यूशन इज डिसोल्यूशन। तो बता रहे थे कि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे पर नहीं हुआ ये, पर पता नहीं कैसे जब से हम हरिनाम लेने लगे, भक्तों के संग करने लगे, आश्रय लेने लगे, वी डोंट इवन नो हाउ दीज थिंग्स हैव गॉन एंड वी डोंट इवन फील इट्स नेसेसिटी इन आवर लाइफ। उसकी जरूरी भी अनुभव नहीं हो रही हमको, महसूस भी नहीं हो रहा है कि हमने उसको छोड़ा है। पहले पहले तो कोशिश करना था, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अरे बहुत तकलीफ होता था, तपस्या थी। अभी तो उनको मन में आता भी नहीं, वो विचार भी नहीं आते। कैसे हो गया? क्योंकि हरि नाम का आश्रय है। तो कली मींस डिसरिगार्ड फॉर अथॉरिटी, दुर्भाग्य सही है, क्योंकि ऐसे है अथॉरिटी, और इसीलिए कारण दे देता है, और कारण दे के हम अथॉरिटी बुरा, इसीलिए हम अथॉरिटी को ही छोड़ दिए तो खत्म होगी बात। तो इस तरह से कली नियंत्रण में कर लेता है। तो कली मींस क्वारल एंड हिपोक्रेसी, झगड़ा और दांभिकता, दोनों का कारण क्या है? जड़ में देखिए, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ क्वारल? झगड़े का उल्टा क्या है? यूनिटी। झगड़ा मतलब एक एक दो को भी एक कर देता है। कभी कभी परिवार में दो लोग हैं, वो उसमें भी झगड़ा, एक एक चले, तू तेरा मुंह मैं सुबह सुबह नहीं देख सकती, तू उधर मैं इधर। तो झगड़ा मतलब तोड़ना, ऑपोजिट ऑफ क्वारल इज यूनिटी, और ऑपोजिट ऑफ हिपोक्रेसी, दांभिकता, इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब जो बोल रहे हैं सो कर रहे हैं, बोलना कुछ और करना कुछ और, तो लोगों पर विश्वास चला जाता है, स्वाभाविक है ये। तो दोनों किस चीज के ऊपर निर्भर है? अहंकार के ऊपर निर्भर है। झगड़ा क्यों होता है? ऐसा इसने क्यों कहा, मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा, चोट लग गया। तो अहंकार के कारण छोटी 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 बातों में कभी कभी, अरे वर्ल्ड वॉर हो जाता है। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, एक शब्द एक व्यक्ति ने कहा, उसके ऊपर एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक शब्द के ऊपर, और दोनों झुकने को तैयार नहीं, शुरू हो गया वो विश्व महायुद्ध एक शब्द के ऊपर। और दूसरा है दांभिकता। दांभिकता क्यों?
हम हैं कुछ और पर दिखाना कुछ और चाहते हैं, तो स्वभाव क्यों? क्योंकि अहंकार करता है कि सबके सामने मैं कैसे, तो मैं दिखाना कुछ और चाहता हूं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं संकीर्तन कितना फायदामंद है। संकीर्तन सबसे बड़ा फायदा है संकीर्तन का क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। देखिए हृदय को शुद्ध करना इतना आसान नहीं है, करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो कंडीशनिंग, जो बद्ध अवस्था है, कभी कभी 2 साल से 3 साल से 10 साल से कोई सिगरेट पी रहा है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है आदत, तो करोड़ों करोड़ों पुनः पुनः चर्वित चरवना नाम करोड़ों जन्मों से करते हुए आए, क्या एक सेकेंड एक दिन में चला जाएगा, एक साल में चला जाएगा, एक जन्म में चला जाएगा? पर भी अब देखते हैं चेतो दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन में जो भी भाग लेता है चेतो दर्पण मार्जनम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट क्या है? हृदय शुद्ध होने लगता है। हम देखते हैं धीरे धीरे ऐसे सारी आदतें जो हम नामुमकिन सोच रहे थे अपने आप छूट जाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भाव सागर में हर एक व्यक्ति चिंतित है, भयभीत है, भय और चिंता दूर हो जाती है। टू ए लार्ज एक्सटेंट ए पर्सन बिकम्स फियरलेस एंड नो एंग्जाइटी। इतना नो एंग्जाइटी रहता है कि दूसरों को एंग्जाइटी हो जाता है कि इसको एंग्जाइटी क्यों नहीं है। हर एक व्यक्ति को चिंता है, इसको चिंता क्यों नहीं है, दूसरों को वो चिंता हो जाता है एकदम हो जाएगा, कैसे तो हो जाएगा, भगवान करा लेंगे। अमेजिंग प्रैक्टिकल प्रूफ। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। सुंदर उदाहरण है कैरव, कैरव एक कमल है, कब खिलता है? जब सूरज खिलता है तो ये चंद्रिका खिलती है। श्रेय सारे मंगलमय, मंगलमय मंगल, मंगल का जो ऑस्पिशियसनेस का जो कमल है वो संकीर्तन जहां होता है सब खिलने लगता है। हमारे जीवन में सब मंगलमय चीज होने लगते हैं, सारे अमंगल आदतें, अमंगल विचार, अमंगल हमारे व्यवहार धीरे 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 दूर हो जाते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। पाश्चात्य देश में जब प्रभुपाद जी गए तो कैसे लोग थे ये अमेरिकन लोग, पर हरिनाम करते 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 धीरे धीरे सारे श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। ये भी सुंदर उदाहरण है। वधु, वधु मतलब क्या? बहु या स्त्री जो नवविवाहित है। विद्यावधु जीवनम, जब हरिनाम करने लगते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू आर वेडेड टू ऑल नॉलेज। सारा ज्ञान अपने आप स्फुरित हो जाता है, क्या करना है, क्या अच्छा है, किस दिशा में जाना है, क्या नहीं करना है, कहां से आया है? सम गट फीलिंग, इंट्यूशन, हमको लगता है कि नहीं ये नहीं करना है। जैसे हम नारद मुनि के कथा देखते हैं मृगारी, हरिनाम करने लगा, जो हर रोज एक बड़े बड़े प्राणियों को मारता था, एक मक्खी को भी मारने के, एक चींटी को मारने के लिए हिचकिचाने लगा। किसने सिखाया उसको? किसी ने उनको शिक्षा नहीं दी, पर सिर्फ हरिनाम से। विद्यावधु जीवनम आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपदम। आनंद बढ़ता जाता है, पूर्ण अमृत आस्वादन, पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है, मतलब नित्य जीवन का आश्वासन होता, आस्वादन होता है, और मृत्यु का भय चला जाता है। पर फिर भी क्यों नहीं लेता आदमी? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता निमित्त एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशम यहा जनी न अनुराग। पर हमारे अंदर अनुराग नहीं है। हरि का आश्रय लेना इतना अच्छा, इतना सरल है, इतने सारे फायदा है, 7 in 1, 7 फायदे 7 in 1। आजकल कलयुग में लोगों को 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 चाहिए, हर एक चीज। टेबल है, टेबल को ऐसा हुआ तो कुर्सी बन जाता है, कुर्सी को ऐसा किया तो रात को बेड बन जाता है, और बेड को ऐसा कर दिया तो अलमीरा कबर्ड बन जाता है। 4 in 1, क्योंकि जमाना ही ऐसा है, सब कुछ छोटे छोटे घर, तो रेडियो है, ट्रांसिस्टर है, मोबाइल है, कैमरा भी है, ये भी है, सब कुछ है उसके अंदर, और उसके अंदर इंटरनेट भी है, 3 in 1, 4 in 1। तो महाप्रभु ने 7 in 1 दे दिया, क्योंकि मालूम है कलयुग के सब लोग को ये 2 in 1, 3 in 1 वाले हैं, तो 7 in 1। पर फिर भी दुर्दैव ईदृशम इहा जनिना अनुराग, दुर्भाग्यवश वी हैव नो टेस्ट, स्वाद नहीं है उसमें। क्यों? महाप्रभु गोज टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, जड़ में जाते हैं समस्या, इस सारे समस्या, संकीर्तन इतना फायदामंद है सब कुछ, और इसी जन्म में जो करोड़ों जन्म में नहीं मिलने वाला भगवत धाम का आश्रय, भगवान के चरण कमलों का आश्रय एक ही जीवन में मिल सकता है, पर फिर भी क्यों नहीं ले रहे? दुर्दैव ईदृशम इहा जनिना अनुराग, इसमें टेस्ट क्यों नहीं है? जड़ में जाते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदाहरी। कीर्तनीय सदाहरी, अगर कीर्तन करना है सही कीर्तन जो भगवान को प्रसन्न करे, निरपराध कीर्तन, शुद्ध नाम, एक नाम भी काफी है, पर वो नाम लेने के लिए पूरा जीवन भर प्रैक्टिस, इट्स ए लाइफ टाइम प्रिपरेशन। कभी कभी लोग कहते हैं हमको एक नाम लेना, एक नाम लेना है बस, इतना क्यों, 16 16 क्यों? अरे पूरा 16 लेंगे तब वो एक नाम ले, लास्ट में लेंगे, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स और मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ स्टडी यू अपियर फॉर 1 आवर और 2 आवर एग्जामिनेशन। कोई बोल सकता है 2 घंटा परीक्षा है ना, क्यों पढ़ना जिंदगी पूरा साल भर पढ़ाई कर रहे हैं वो 2 घंटे के लिए। लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो और ये चारों चीज जो देखिए, संकीर्तन करने का, अमानिना मान देन तृणादपि सुनीचे न तरु, अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू द फॉल्स ईगो। तो कलयुग का सबसे बड़ा चीज है मिथ्या अहंकार, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच ब्लॉक्स अस फ्रॉम अचीविंग द मर्सी। भगवान की कृपा, जो हरि की प्रसन्नता वो करना है तो भगवान की कृपा चाहिए। ध्रुव महाराज, वो अहंकार था उनके अंदर, वो रिवेंज का भाव था कि कैसा मैं, सुरुचि ने ऐसा कहा है मैं करूंगा। पर नारद मुनि ने, पहले सुनीति ने, उनकी मां ने, और बाद में नारद मुनि ने इतना सुंदर उन्हें मार्गदर्शन दिया कि बोले वो नेगेटिव चीजों को साइड में रखो, पहले जो पॉजिटिव चीज है वो करो। उनका जो क्रोध था उसको चैनल करके, इंटेंस एंगर वॉज कन्वर्टेड टू फोकस्ड डिटर्मिनेशन। तीव्र क्रोध जो था उसको चैनल करके उन्होंने तीव्र दृढ़ता में निश्चय कर दिया, एकाग्र दृढ़ता, और उस दृढ़ता के साथ वो क्षत्रिय स्पिरिट जो था, क्षत्रिय भाव ऐसा है, कोई अगर कुछ कह दे तो अपमान सहन नहीं कर सकता है, क्षत्रिय जो है अपमान सहन नहीं कर सकता है वो, एक ब्राह्मण सहन कर लेगा, अरे छोड़ो ठीक है ठीक है, एक क्षत्रिय सहन नहीं कर सकता, मर जाएगा पर सहन नहीं कर सकता। तो उसको उन्होंने केंद्रित किया, और यहां ध्रुव महाराज ने तपस्या की, और तपस्या का फल आज हम आधी कथा थोड़ा बढ़ाएंगे सामने। तो ये असली तपस्या है, संकीर्तन, प्रामाणिकता और एकता। दांभिकता का विरुद्ध है प्रामाणिकता, हम नम, हम तुच्छ, हम कुछ नहीं है, यही सही बात है, इट्स ए फैक्ट, वी आर नथिंग, वी आर इनसिग्निफिकेंट। और एकता क्या है? कृष्ण को केंद्र में रखना है, हमको इसी जीवन में भगवत धाम जाना है, शुद्ध होना है, भक्तों का आश्रय के अलावा और कहां जाएंगे हम लोग, कहां जाएंगे, वेयर एल्स इज दैट शेल्टर। बड़े कृपा पूर्वक भगवान ने दी है वो, उसको छोड़ के और कहां जाएंगे, वेयर एल्स कैन वी फाइंड दैट शेल्टर। तो ध्रुव महाराज ने तपस्या की, और जैसे मैंने कहा तीव्रता बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और जैसे 5 6 महीने जैसा समाप्त हुआ, देवतागण तकलीफ हुआ तो भगवान के पास गए, भगवान को पूछने लगे क्या हो रहा है ये, हमारा सांस बंद हो गया है, ध्रुव महाराज ने सारे नौ द्वार बंद कर दिए तो हमारा भी द्वार बंद हो गया है। तो भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, ये इस लड़के की तपस्या का कारण है और इसका उद्देश्य बुरा नहीं है, ये मुझे प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। हिरण्यकशिपु को तपस्या में भी ऐसी हुई थी, पर उसका उद्देश्य बहुत ही बुरा था। भगवान कहे कि नहीं, इस बालक का उद्देश्य बुरा नहीं है, मैं तुरंत जाके इसे खुश करता हूं, आप लोग कृपया वापस जाइए। तो देवतागण खुशी हो गए, चले गए, और भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पे बैठकर मधुवन पधारे। जैसे ही ध्रुव महाराज के सामने आए, ध्रुव महाराज स्तंभ के समान, खंभे के समान दृढ़ से आंखें बंद किए अपने ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यंतियम योगिनो, अपने हृदय में भगवान का, जैसे मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे दर्शन कर रहे थे अपने हृदय में। एंड 24 आवर्स कंटिन्यूअसली, दिस इज कॉल्ड समाधि। समाधि में थे वो। समाधि मीन्स सम्यग अधीयते अस्मिन आत्मतत्वम याथात्मम इति समाधि, दिस इज द डेफिनेशन। 24 आवर्स एंगेजमेंट इन सेल्फ रियलाइजेशन। ऑफकोर्स ऐसा बैठना यही नहीं है, अर्जुन जब लड़ाई लड़ रहा था वो भी समाधि में था। आप बोलेंगे ये कैसा समाधि, तीर चला रहा है, मार रहा है लोगों को, बट ही वॉज एब्सोल्यूटली एब्सॉर्ब्ड इन हिज सर्विस टू द लॉर्ड। भगवान की इच्छा थी, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए लड़ो अर्जुन, मैं चाहता हूं तुम कि लड़ो। हम जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में, अगर एक ही इच्छा होनी चाहिए, इज दिस प्लीजिंग टू कृष्णा, क्या मैं जो कह रहा हूं, क्या मैं जो सोच रहा हूं, क्या मैं जो बोल रहा हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं, क्या कृष्ण को प्रसन्न करेगा? कैसे पता चलेगा कृष्ण को प्रसन्न करेगा कि नहीं? गुरु साधु शास्त्र के द्वारा। और अगर मालूम है, करते जाइए, दैट इज समाधि। समाधि डजंट मीन एक जगह बैठने और ध्यान करना, समाधि का मतलब है हर क्षण मैं सोच रहा हूं मैं भगवान का नित्य दास हूं और अपने प्रभु को प्रसन्न करने की, मैं जो भी कर रहा हूं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, मैं घर का जिम्मेदारी संभाल रहा हूं उनके लिए कर रहा हूं, परिवार का जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, कोई काम का जिम्मेदारी संभाल रहा हूं केवल इसके लिए, ताकि उनकी सेवा के रूप में, इस भावना से करें। तो समाधि में थे, भगवान सामने आए। जैसे सामने आए, ध्रुव महाराज जिनको पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ध्यान था, भगवान उनके हृदय में अदृश्य हो गए। ध्रुव महाराज विचलित हो गए, ऐसे कैसे, पूर्ण रूप से मैंने आई हैड कैप्चर्ड द लॉर्ड इन माय हार्ट, कहां चले गए वो? तो उनका ध्यान टूटा। टूटा तो देखे कि जिनके ऊपर वो ध्यान कर रहे थे इतने महीनों भर, सामने वही खड़े हैं। ध्रुव महाराज जैसे खड़े थे एक लाठी के समान, डंडे के समान, दंड उसलिए कहते दंडवत, दंडवत सीधे गिर गए एकदम भगवान के चरण कमलों में। अपनी आंखों से भगवान के स्वरूप के जो अमृत को पी रहे थे, ही वॉज ड्रिंकिंग द लॉर्ड थ्रू हिज आइज। आप बोलेंगे ऐसा पीते हैं क्या भगवान को? इट्स ए ब्यूटिफुल मेटाफर। भगवान के सुंदर स्वरूप का जो अमृत था उसका पान कर रहे थे अपनी आंखों से। जैसे गिरे भगवान के चरण कमलों को पकड़े और चूमने लगे। भगवान ने प्रेम पूर्वक उन्हें उठाया, गदगद हो गए, नम्रतावश, मैं बालक हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं कैसे गुणगान करूं किसी का, खास करके ऐसे व्यक्ति का, साक्षात भगवान श्री विष्णु मेरे सामने खड़े हैं कृष्ण गर्भ, क्या मैं कहूं? कमी महसूस कर चुप खड़े थे वो। He felt himself unqualified. मैं क्या योग्यता है गुणगान करने का? भगवान जान गए ध्रुव महाराज की हृदय की अवस्था को, तो उन्होंने अपना शंख लिया और इस छोटे से 5 साल के बालक के कपोल में स्पर्श किया, touched it to his forehead. और जैसे वो स्पर्श किए, संपूर्ण कल्मश से शुद्ध होकर ध्रुव महाराज संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके भगवान का गुणगान करना शुरू किया। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, पर समय के कमी के कारण मैं आपको तीन ही प्रार्थना, जो बड़े महत्व, चार प्रार्थना सुनाऊंगा मैं आपको, हो सके तो, समय हो सके तो, और भी ज्यादा करना है, लंबा जाना है, पूरी कथा कहनी, पर ये चार प्रार्थना मैं आपको सुनाऊंगा जो सार में हम समझ सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं, समझ गए ध्रुव महाराज कि उन्हीं की कृपा से मैं कुछ कह पा रहा हूं। और फिर कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नां अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कह रहे हैं, यो अंतः प्रविश्य, हे प्रभु आप मेरे हृदय में प्रवेश करके मम वाचम, मेरी वाच, मेरी जो वाक शक्ति है उसको स्फुरित कर रहे हो। मम वाचम इमाम प्रसुप्ता, आज तक वो सोया हुआ था। आप कहेंगे ऐसे कैसे सोया हुआ था, वो तो जागा था, तपस्या कर रहा था। हम जागते हुए भी सोए हैं और महाविष्णु सोते हुए भी जागे हैं, यही अंतर है एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति में और एक बद्ध जीव में। या अनिशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम, हम सोते हम जागे हैं, हम तो कहेंगे कि जागे हुए, हम सब जानते, देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमारा कान सुन रहा है, हमारा जिह्वा कुछ कह रहा है, आंख देख रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है, पर हम सोए हुए हैं। वी आर स्लीपिंग टू आवर ओरिजिनल आइडेंटिटी, वी आर इन ए ड्रीम स्टेट। अभी सपने में हम घूम रहे, सपने में अपने आप को आदमी कुछ और समझता है, मैं राजा हूं ऐसा समझ के रहा, और उठता है तो देखता है कि भिखारी है फुटपाथ पे लेटा हुआ। तो सपने में आदमी अपने आप को कुछ और समझ बैठता है। इस तरह से जीव जागो गौरचंद्र बोले, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उठो उठो सोए हुए जीव। कहां सोए हुए हैं, माया के गोद पे लेटे हैं हम लोग। अभी तक मैं सोया हुआ था, बड़बड़ कर रहा था, जिसका कोई फायदा नहीं, सपने में कितना भी बड़बड़ करो क्या फायदा होगा। तो योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, और एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, ही इज स्लीपिंग टू हिज फॉल्स आइडेंटिटी एंड ही इज अवेक टू हिज रियल आइडेंटिटी। अपना मूल स्वरूप में वो जागृत है, और मूल स्वरूप क्या है हमारा, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, कृष्ण की सेवा कर रहा है, क्योंकि जानता है आत्मा जो है भगवान का नित्यदास है, शरीर आ रहा जा रहा है। तो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवयति, आपने उसे, संजीवनी कहते हैं ना, संजीवनी जो मरे हुए को जागृत कर देता है, ऐसा मैं मरा हुआ था। यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां, सोए हुए मेरे सारे इंद्रियों को संजीवयति, आपने उसको जागृत कर दिया है। अखिल शक्तिधर स्वधामना, क्यों, केवल आप ही कर सकते हो प्रभु, क्योंकि आप अखिल शक्तिधर, अनंत शक्ति है आपके पास, आपके नाम अनंत है, आपके रूप अनंत है, आपके गुण अनंत है, आपकी शक्ति अचिंत्य और अनंत है। अखिल शक्तिधर स्वधामना बाय द इंटरनल पोटेंसी, भगवान की तीन शक्ति होती है, अंतरंग बहिरंग और तटस्थ। बहिरंग शक्ति में हम फंसे हुए हैं, स्वधामना अंतरंग शक्ति में प्रवेश करना, बिना अंतरंग शक्ति में प्रवेश किए हम भगवान को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अंतरंग शक्ति में प्रवेश करना मतलब श्रीमती राधा रानी का डिपार्टमेंट है वो। महात्मानस्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, और दैवी प्रकृति कौन है, अंतरंग शक्ति, और अंतरंग शक्ति की मुख्य है लादिनी शक्ति, लादिनी शक्ति का स्वरूप है श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी यानी भक्ति, शी ओनली शी कैन गिव डिवोशन, भक्ति दे सकती है वो। इसीलिए हम कहते हैं हरे कृष्णा, विदाउट द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी यू कांट इवन नो हाउ टू प्लीज कृष्ण। भक्त्या माम अभिजानाती आवान्यश्चास्मि तत्वतः। तो प्रहलाद ध्रुव महाराज जो तपस्या कर रहे थे, क्योंकि वो नारद मुनि के आदेश पे था, वो तपस्या हिरण्यकशिपु को जैसा तपस्या नहीं था। वो भौतिक संसार में लोग तपस्या, हर एक व्यक्ति कर रहे तपस्या, वो तपस्या नहीं था। वो अखिल शक्ति स्वधामना। अभी हम बहिर्मुख हो गए, भगवान के बहिर्मुख हो गए और इसीलिए माया में पड़ गए। पर सेवोन्मुख, अंतर्मुख, अंतर्मुख होने का मतलब क्या है? अंतर्मुख होने का मतलब भगवान की ओर मुड़ना, भगवान की शरण जाना, भगवान की शरणागत, भगवान की शरणागत होना। और जैसे शरणागत होने का प्रयास करते हैं तो भगवान अपने शक्ति प्रदान करते हैं। ही इंजेक्ट्स, ही एम्पावर्स द डिवोटी। पद्म पुराण में यह बहुत सुंदर श्लोक है, नाम के इंद्रिय, कौन सा श्लोक है, एक अत श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रे सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ। सेवोन्मुख मतलब भगवान की ओर मुड़ना, प्रभु मैं आपकी शरण आना चाहता हूं। जब मुड़ते हैं भगवान की ओर, सेवोन्मुखे ही जिह्वा स्वयमेव स्फुरत्यदः। जैसे हम भगवान को शरण जाने की कम से कम इच्छा करते हैं, हमें मालूम नहीं कैसे जाना है पर इच्छा भी करते हैं, स्वयमेव स्फुरति अदः, स्फुरति यही कह रहे हैं आप ध्रुव महाराज। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामनाम अन्यांच हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। स्फुरित हो रहा है। वल्लभ भट्टाचार्य, वल्लभाचार्य चैतन्य चरितामृत में वल्लभ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु का के भक्तों को देखकर कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण कहते हैं, कलीर कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति नहीं नहीं बिना नहे तार प्रवर्तन। हमारे अंदर क्या बोलने की शक्ति है? वी हैव एक्चुअली नो पावर टू स्पीक। ऑफकोर्स गधा भी ढहचू ढहचू करता है, बोलने में कोई कमी नहीं है, बड़बड़ लोगों को बड़बड़ करने की कोई कमी नहीं है। लोग 24 घंटे कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते, पूरी दुनिया भर, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, थकते नहीं है लोग, बड़बड़ रात को भी, सुबह उठ फिर से शुरू, सोते उठते साथ शुरू। कहां से शक्ति मिलता? अरे भक्त को कथा करते करते थक जाते, 2 घंटे बोलते, कहां से वो शक्ति मिलती है उन लोगों को? पर वो शास्त्र के अनुसार वो बेडुक, क्या कहते हैं, मेंढक के समान है, टर 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 कह रहा है, उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा से बोल रहा हूं, पर सांप आके उसे निगल जाता है। काल सर्प निगल जा रहा है हमें, एवरी डे एंड एवरी नाइट इज लाइक 1 डे क्लोजर टू डेथ। पर जब हम, इसीलिए हम जब भगवान के बारे में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सारे गुरु वंदना करते हैं, सारे परंपरा को प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, कृपया आप वो शब्द मेरे मुंह में डालिए, मेरे को एक साधन बनाइए और ऐसे शब्द मेरे मुंह में डालिए जिसके द्वारा लोग आपकी चरण आ सके, जो ये सारे शास्त्रों का उद्देश्य है। हम सिर्फ माध्यम बनने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और वो माध्यम बनने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाधा है हमारा मिथ्या अहंकार। अपनी अहंकार से अर्जुन कह रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं अर्जुन, निमित्त मात्र भव सव्य साची, निमित्त बनो और अद्भुत कार्य करो तुम। श्रील प्रभुपाद जी वो भी जब जलदूत में जा रहे थे, उन्होंने एक ही प्रार्थना की, काष्टेरो पुतली जहां नाचाओ से मते, भक्ति ना ही वेद ना ही, मेरे को मुझे मेरे अंदर भक्ति नहीं है वेद नहीं है, पर नाम तो बड़ा दे दिया भक्ति वेदांत। प्रभु आप नचाओ मुझे जैसे चाहिए। ऑफ कोर्स कोई भी कह सकता है नचाओ नचाओ, पर अहंकार के कठपुतली बनेंगे या भगवान के हाथों के कठपुतली बनेंगे हमारे ऊपर है। पूरी दुनिया तीन गुणों की कठपुतली बनी हुई है। जैसे हमारा अहंकार कहता है, काम क्रोध लोभ मोह कहता है, वैसे हम नाच रहे हैं। और एक्चुअली शरणागत होने का मतलब, एक्चुअली भगवान के हाथों में एक निमित्त बनने का मतलब है वी हैव टू गिव अप आवर फॉल्स ईगो। और उसका मतलब है मामेकम शरणम व्रज। ध्रुव महाराज शरण गए पूर्ण रूप से, भगवान ने उन्हें स्पर्श किया अपने उसके कपोल पे अपने शंख के द्वारा, और अब कह रहे हैं अखिल शक्ति स्वर धर स्वधाम्ना अन्याम च हस्त चरण श्रवण त्वक आदि सब पूर्ण रूप से एक एक अंग जो है संजीवयति, और इस तरह से आपकी सेवा में लग रहा हूं मैं, जो भी कह रहा हूं आप मेरे द्वारा कहला रहे हो प्रभु, मेरे हृदय की बात आप सिर्फ कहला रहे हो, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं ऐसी प्रार्थना करने की। हर एक व्यक्ति को, कम से कम भक्तों को यह सोचना चाहिए हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, देन वी विल नेवर बिकम प्राउड। अगर सर्जरी होने के बाद अगर एक सर्जन सर्जरी करता है तो पेशेंट उठ के उस स्कैल्पेल को दंडवत प्रणाम नहीं करता, बहुत बहुत धन्यवाद आपने क्या काटा, सर्जन को बोलता है धन्यवाद। सिमिलरली हम एक सिंपली बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, भगवान के हाथों में एक निमित्त बन सकते हैं, और निमित्त बनने के लिए वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट का मतलब है शरणागति। शरणागति मतलब क्या, मैं अपना सारा चीज साइड में रखा, आप जो चाहते हो बोलो मैं करने के लिए तैयार, इस तरह से वो होता है। तो ये तरह से बहुत सुंदर प्रार्थना है जहां ध्रुव महाराज अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागत होकर यह प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये प्रार्थना सुनिए। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक मिला जो हम सबको कभी सोच भी नहीं सकते। हम 36,000 साल तक भगवान कहने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे वरदान मिले उनको, सब वरदान मिल रहे हैं, पर अभी क्या कह रहे हैं, भगवान साक्षात प्राप्त हो गए। अब ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं सुनिए। पछताते हुए कहते हैं भगवान प्राप्त हो गए, पर उनकी प्रार्थना क्या है, जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले शव तुल्य देह की इंद्र तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं वे निश्चय ही माया द्वारा प्रभावित हैं। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्र तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। मैंने ऐसा कठोर तपस्या किया जो आज से पहले ना कोई किया है, ना भूतों ना भविष्यति। ऐसी तपस्या की, पर मांगा क्या, एक भौतिक चीज मांगा, इस संसार की चीज मांगा मैंने। हाउ फूलिश, कितना मूर्ख हूं मैं। एक बड़े चक्रवर्ती सम्राट को आपने प्रसन्न कर दिया और प्रसन्न हो गया, बोल बेटे क्या चाहिए, थोड़ा भूसा मिलेगा, बोले उसके लिए मेरे को इतना क्यों प्रसन्न किया, तो उधर ही मिलेगा उधर। ऐसी परिस्थिति है हमारी, आपको प्रसन्न किया जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे निकालकर भगवत धाम ले जा सकते हो, और आपसे मैं पूछ रहा हूं एक भौतिक चीज है, हालांकि वो भी कोई मामूली चीज नहीं है जो ध्रुव महाराज को मिला, पर उनकी जब भगवान को दर्शन किए, भगवान का दर्शन किए, तब वो सोच रहे हैं। यहां नहीं, हरिभक्ति सुदोदय में एक सुंदर प्रार्थना है, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्यवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम
स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे।
कहते हैं स्थानाभिलाषी, एक स्थान का, स्थान की अभिलाषा में तपसी स्थितो हम, मैं तपस्या कर रहा था और उसके बदले में क्या मिला, त्वाम प्राप्यवान, आप आ गए प्रभु, देव मुनीन्द्र गुह्यम, अरे बड़े बड़े मुनिगण भी आपको दर्शन, आपके दर्शन नहीं कर पाते, आपका साक्षात दर्शन हो गया मुझे। तो मेरा भाग्य क्या है, मेरा अहोभाग्य क्या है, काचन विचिन्वन, मैं कांच के टुकड़े की ढूंढ में था, अब मुझे हीरा मिल गया। क्यों कांच के टुकड़े, अगर कांच का टुकड़ा अगर जोर से पकड़ोगे खून निकलने लगता है, अच्छा दिखता बहुत अच्छा है पर दबाओ खून निकलने लगता है, तो इस तरह से भौतिक संसार की चीज अंत में नष्ट होने वाला है। बोले कांचन विचिन्वन, ऐसे कांचों के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, अपि दिव्य रत्नम, अभी मुझे रत्न मिल गया, स्वामी कृतार्थ होस्मि, मैं कृतार्थ हो गया, वरम न याचे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो व्यक्ति पूरा खा के जोर से डकार मारा हो उसके सामने का रसगुल्ला रखो, धन्यवाद आप खाओ, कृतार्थ हो उसमें, मैं पूर्ण रूप से, द सोल इज सैटिस्फाइड। जब आत्मा तृप्त हो जाता है तो मन इंद्रियां सब कुछ तृप्त हो जाती है, पर सिर्फ इंद्रियों को तृप्त करो, सिर्फ मन को तृप्त करो, और कभी तृप्त नहीं होते सबसे पहले, और हो भी गए तो क्षणिक लिए, और ज्यादा खुजली जैसा, पहले खुजला फिर इतने जोर से आएंगे और जोर से खुजलाना पड़ता, फिर बाद में अच्छा लगता है, फिर और इतना जोर से खुजली होता है, अनुभव की बात कह रहा हूं खुजली होता है अच्छा लगता है, खुजला है बंद हो गया, फिर और थोड़ा खुजली होता है अच्छा लगता है, ऐसे खुजलाते खुजलाते बाद में इतना जोर से खुजलाना पड़ता है खून आने लगता है, और बाद में खुजलाया तो तकलीफ दर्द, और नहीं खुजलाया तो भी तकलीफ, पूरी चेतना वहीं रहती है, खुजलाना खुजलाना है। भौतिक इच्छाएं ऐसी है, कभी तृप्त नहीं होती। तो ये तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखते हैं जो ध्यान देने योग्य हम लोगों के लिए। ध्रुव महाराज अपने आप को मतलब धिक्कार रहे हैं, क्या किस चीज के लिए मैं गया, पर दुर्भाग्यवश हम लोग उसी की इच्छा में कभी कभी भक्ति में भी वही करते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं हमको क्या प्रार्थना करना है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतान भक्ति रहे दुखी त्वयि। फिर और एक सुंदर, फिर क्या चाहते हैं, भगवान पूछेंगे ठीक है भाई ये तुमने नहीं चाहिए फिर भी देने वाला हूं चिंता मत करो, पर चाहिए क्या तुम्हें, सोचिए ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त कर लिए पर उनकी इच्छा क्या है। हे अनंत भगवान कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेम सेवा में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं, मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर लहरें उठ रही है। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूं जो नित्य है। ध्रुव महाराज के हृदय से आ रहा है, भगवान के सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा और वो समझ जाएंगे भगवान, अब भागवत में नहीं आएगा वो प्रार्थना अगर ऐसे ऊपर ऊपर से अगर कहा है, उनके हृदय से आ रही है, वो चाहते और कुछ नहीं चाहते, बोले शुद्ध भक्तों का हमें संग चाहिए जो आपके गुण और लीलाओं का हमेशा नितांत हमेशा निरंतर गुणगान करते रहते हैं, ऐसे भक्तों का हमें संग, मुझे संग चाहिए। तो कोई पूछ सकता है कि आपका प्रोग्राम क्या है भगवत धाम को पार, भवसागर को पार करने का,
आसानी से अपने आप हो जाता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, उसकी चिंता ही नहीं रहती एक भक्त को जो पूर्ण रूप से मग्न रहता है भक्तों के संग में हरिनाम कीर्तन। इट्स ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। भले हम उस स्तर पर नहीं है पर हम देख सकते हैं जब ऐसे भक्तों के संग में आते हैं टू ए लार्ज एक्सटेंट हम भूल ही जाते हैं बाहर की परिस्थिति क्या है क्या है, चिंतित निश्चिंत हो जाते हैं कम से कम उस समय तक। और धीरे 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 श्रवण करते रहेंगे तो धीरे धीरे जैसे भगवान गीता में कहते हैं लगातार भक्ति माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। हमारा आधा जीवन शोक करने में और आधा जीवन क्या नहीं है उसके लिए आकांक्षा में। क्या है जो चले जाएगा वो सोचते सोचते आधा जीवन, क्या नहीं है वो सोचते सोचते दूसरा। एस्पिरेशंस फॉर फ्यूचर एंड लैमेंटेशन फॉर द पास्ट, यही हमारा जीवन इन एसेंस। और इसीलिए इसके बारे या उसके बारे में सोचते सोचते कभी हम लोग प्रेजेंट में रहते ही नहीं। यही हमारी समस्या है। ये ध्रुव महाराज की इच्छा है। और सोचिए कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे एक संग मिला है पोटेंशियली प्योर डिवोटिस। ऑफकोर्स सब कोई शुद्ध भक्त नहीं है पर उनकी दी हुई मार्ग पर चलने के कारण ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उनके अगर परंपरागत चर्चा कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर हियरिंग भगवान के संपर्क में है, भक्तों के ऐसे भक्तों के संपर्क में है। ये हमारा सौभाग्य है जो ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं जिनको ध्रुव लोक मिला ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पर उसमें तृप्त नहीं है वो। और हम सोच रहे हैं हमको एक अच्छा बंगला मिल जाएगा तृप्त हो जाएंगे। कैसा दुर्भाग्य है हमारा, हाउ फूलिश। और अंत में लंबी सी प्रार्थना है पर अंत में एक श्लोक कहते हैं हे भगवान हे परमेश्वर आप सभी वरों के परम साक्षात्कार रूप हैं, अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेयस्कर है। बड़े बड़े राजा बड़े बड़े ब्रह्मा बनने से आपके चरणों का रज श्रेयस्कर है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए आप अपनी अहितु की कृपा से पूर्व परिपालक हैं, जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाकर हमले से उसकी रक्षा करती है। दूध पिलाती है और हमले हमले मतलब आक्रमण से उसकी रक्षा करती है। नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन, यही एक प्रार्थना करते हैं। प्लीज नरिश मी विथ प्योर डिवोशन। जैसे गाय बछड़े को दो काम करती है, एक दूध पिलाती है और अंदर से दष्ट पुष्ट कर देती है और बाहर से सुरक्षित रखती है ताकि उसके ऊपर कोई तकलीफ ना हो। तो जिस प्रकार गाय बछड़े को बचाती है इस तरह से प्रभु आप मुझे इस भक्ति में लगाइए, भक्तों के संग में जो शुद्ध भक्ति है। क्योंकि भक्ति जो है हमारे अस्तित्व को पुष्टिकरण करती है। इट नरिशेस अवर डिवोशन, इट नरिशेस अवर नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। और दूसरा इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन, न धनम न जनम न सुंदरिम। मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे भक्ति में लगाए रहे और मुझे भौतिक कामनाओं से बचाए। कभी मैं और कोई इच्छा नहीं करूं आपके चरण के रज के अलावा, बड़े बड़े राज्य बड़ा राजा बनना बड़ा ये बनना बड़ा वो बनना मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोई पद नहीं चाहिए। वो पद जो मेरा मूल स्वरूप है आपके चरण कमलों की सेवा। तो ये ध्रुव महाराज की बहुत सुंदर प्रार्थना है। प्रार्थना करने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अब भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं। भगवान देखिए, एक जब भक्त भले भौतिक इच्छा से भगवान के पास जाता है, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, आपकी ओरिजिनल इच्छा, मूल इच्छा से जो आए भगवान के पास, वो इच्छा तो निश्चित पूर्ण होगी है, और साथ साथ में दूसरी इच्छा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भौतिक इच्छाएं खुजली के समान, जैसे मैंने बताया, खुजलाओ तो तकलीफ, नहीं खुजलाओ तो तकलीफ। तो खुजली, अगर अब वो इस खुजली को पूर्ण करने के लिए किसी दोस्त के पास जाए और बोले खुजलाओ, तो वो खुजलाएगा बस। पर अगर आप खुजली लेके डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर खुजलाएगा नहीं, उसके ऊपर एक ऐसा दवाई डालेगा ताकि खुजली बंद और आप स्वास्थ्य स्वरूप को प्राप्त करोगे। इस तरह से जब देवताओं के पास जाते हैं वो खुजलाते हैं। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्र, जो मांगा खुजली कर दिया, हो गया ना खुजली, फिर से और एक खुजली, एक पुत्र हो गया, पुत्री चाहिए, ये पास हो गया, अभी एमबीबीएस पास हो गया, अभी मुझे एमडी में करा दो ना, एडमिशन तो दिला दो प्रभु, वो एक खुजली, अब वो हो गया, अभी जॉब दिला दो, जॉब दिला दो, अभी पति दिला दो, पत्नी दिला दो, उसके बाद बच्चे दिला दो, उसको एडमिशन दे, चलता ही ये खुजली, कभी खत्म ही नहीं होता है, मरने तक भी ये खुजली नहीं होता है। पर क्या सारे समस्याओं का रामबाण दवा, दैट इज डिवोशन, गोइंग टू द सुप्रीम लॉर्ड, वो डॉक्टर के पास जाने के बराबर है। वो खुजलाएंगे नहीं तुम्हारे खुजली को, ये इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे, सबसे पहले वो खुजली ही निकल जाएगा। अरे खुजला, फिर भी मैं थोड़ा एक बार खुजला देता हूं, क्योंकि उसलिए मेरे पास आए थे तुम। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। हमारे एक भक्त थे, हैं बंबई में, जिसको भी नाम चाहिए प्रवचन के बाद पूछ लीजिएगा। ये भक्त आए, बातचीत हो रहा था मेरा, किसी तरह से वो भक्त बने, फिर पहले चैलेंज किए, बोले ऐसा ऐसा मैंने नहीं, मेरे को कन्विंस करो, मैं ऐसा वे नहीं करने वाला, माला नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आया मंदिर देखने के लिए बस, डोंट थिंक आई एम गोइंग टू चैंट योर होली नेम, फिर मेरा होली नेम भगवान का होली नेम करो। मैंने कहा ठीक है, इफ यू कैन कन्विंस मी ए बेटर सिचुएशन, आई विल ऑल्सो लीव दिस एंड फॉलो यू, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। फिर वो लिए, लेने के बाद अभी 4 साल से भक्ति कर रहे हैं, और वो एक दिन आए, बोले प्रभु जी आपको मैं सच बताता हूं, मैं कृष्ण भावना में आने से पहले मेरी इच्छा थी, पागल जैसा था मैं, हर गाड़ी जितने सारे कार हैं सबको एक बार चलाना था मेरे को, आई वॉन्टेड टू पोजेस एंड ड्राइव ऑल द कार्स, मार्केट में जो भी आता है सर, इसीलिए मैं कपड़े वपड़े अच्छे लगा के ऐसा चाबी घुमाते हुए, जबकि कार नहीं मेरे पास, फिर भी चाबी घुमाते हुए शोरूम में जाता था और टेस्ट ड्राइविंग के नाम पे हर गाड़ी चलाता था मैं, और एक ही शोरूम में 2 बार नहीं जाता था, क्योंकि वो लोग बोलेंगे ये बार बार आता है लेता नहीं है। हर शोरूम में जाता था ऐसे हिलाते, पार्किंग वहीं कहीं किया हूं बोल के, टेस्ट ड्राइविंग करना है मेरे को, ये सब गाड़ी चलाया हूं, क्वाली से लेकर सुमो से लेकर ये है, अभी वो मर्सिडीज बेंज, ये वो सब चला दिया हूं, ऐसा पागल था मैं। और जब भी मेरे को 2 किलोमीटर से दूर एक गाड़ी देखता था तो उसका मॉडल, उसका सब, मतलब कुंडली पूरा निकाल देता था मैं, ऐसा मैं पागल था, एक प्रकार का खुजली, खुजली, और ये खुजली लेके मैं कृष्ण भावना में आया। ऑफकोर्स मुझे मालूम नहीं था कि होता है, और बोल रहे आज भगवान की कृपा से 2 गाड़ी है मेरे पास, एक ऐसे घूमने के लिए और एक ऑफिशियल इसमें जाने के लिए, और अच्छा है, मैं मतलब ये देता हूं दूसरा लेता हूं, ऐसा हो रहा है अभी भी, पर हृदय में एब्सोल्युटली कोई इच्छा नहीं रही, ऐसा नहीं पागल पर, वो जो खुजली था ऐसा नहीं है, अभी मालूम है पत्नी बच्चों को ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, बस 2 व्हीलर में नहीं होगा, बच्चे सबको बैठा के ऐसा मुश्किल है, बस 4 व्हीलर है, खुशी। उन्हें पता नहीं कहां गया हो, मैं कभी सोचता नहीं था कि एक डिजायर विल एवर गो अवे, और अभी मेरे पास वो ताकत है खरीदने की, पर इच्छा नहीं, भगवान ने वो ताकत दे दी, बहुत सारा मेरा ड्यूज था, लोन था पिताजी के गुजरने के बाद, वो लोन सब क्लियर हो गया, पैसा है,
गाड़ी दो है पर इच्छा नहीं, अभी मैं बहुत हो गया बस।
तो यहां वही चीज ध्रुव महाराज को प्रश्नगर्भ भगवान कह रहे हैं कि ध्रुव तुम अपने पिता के राज को प्राप्त करने की इच्छा से आए थे, मतलब ऐसी पदवी को प्राप्त करने के लिए। पिता जो थे वो पृथ्वी के सम्राट थे और प्रपितामह ब्रह्मा जी वो पूरे ब्रह्मांड से सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी की पदवी। और तुम चाहते थे कि सर्वश्रेष्ठ पदवी चाहिए, तो यस तुम्हें वो प्राप्त होगा, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करता हूं। देखिए भौतिक इच्छा से गए थे ध्रुव महाराज, और अभी कुछ नहीं चाहिए उनको, कुछ नहीं चाहिए, बोल रहे नहीं चाहिए मुझे, मूर्खता मैं हीरे के बदले कांच के टुकड़े मांग रहा था, अभी हीरा मिल गया मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुम आए थे तुम्हें मिलेगा, एक तो तुम्हें एक ऐसा राज्य मिलेगा, अ प्लेस नॉट रूल्ड बाय एनी वन एल्स बिफोर। ब्रह्मा जी भी इस राज्य पर इस पद को प्रवेश तक नहीं किए, स्थान में ऐसा स्थान श्वेत द्वीप जहां विष्णु निवास करते हैं ध्रुव लोक, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा वो। ही वॉन्टेड ए प्लेस, उनको एक ऐसा स्थान पद चाहिए था जो तीनों लोकों में आज तक किसी ने प्राप्त किया है ना कर सकेगा, और वैसा स्थिति मिल गया ध्रुव लोक। उसकी खासियत क्या है, क्यों सर्वश्रेष्ठ है ये? संपूर्ण ब्रह्मांड का जब नाश हो जाता है महाप्रलय के समय, ध्रुव लोक का नाश नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव लोक जो है भगवत धाम का ही एक अंश है इस भौतिक संसार में। ऐसी पदवी जहां कोई बद्ध जीव, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं प्रवेश किए हैं, वो भी क्षीर समुद्र के तट पर आकर प्रार्थना करके सुनते हैं भगवान को और चले जाते हैं, वहां तुम्हें राज्य, वहां तुम राज्य करोगे जिसका नाश पूरे ब्रह्मांड के नाश पर भी नहीं होगा। और हां, तुम द्वेष से आए थे, रिवेंज क्या बोलते हैं, बदला लेने की भाव से आए थे सुरुचि के बारे में, वो भी मैं तुम्हें सुना दूं। सुरुचि का पुत्र उत्तम वो जंगल में जाएगा शिकार करने के लिए और उसकी मृत्यु हो जाएगी कुछ ही समय में, और उसे ढूंढते ढूंढते सुरुचि पागल जैसी जाएगी और वो भी एक जंगल दावाग्नि में जलकर राख हो जाएगी। क्यों? प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि उसने ध्रुव महाराज के प्रति अपराध किया। तो कोई कह सकता है, अरे अपराध कैसा भाई, अभिशुद्ध बना, भक्त बनाओ, पहले तो मामूली भक्त था। बोले अपराध कब हो सकता है, अगर भविष्य में कोई भक्त बनने वाला है शुद्ध भक्त और अभी उसके प्रति अपराध हो तो भी वो अपराध है। पता नहीं आपके बगल में कौन बैठा है, थोड़ा ध्यान से व्यवहार कीजिए, कल पता चलेगा कि सन्यासी बन गया हो और पूरे विश्वभर में प्रचार कर रहा है। अरे वो नेंगटा पाचो, वो नंगा लड़का जैसी बिना चड्डी के घूमता था, वो भक्त बन गया। होशियार से रहना पड़ेगा हमको। ऑफ कोर्स पुराणों में उसका वर्णन है, विष्णु पुराण में वर्णन है कि ध्रुव महाराज अपने पिछले जन्म में कौन थे, एक अच्छे ब्राह्मण थे जो विष्णु पर बड़े तीव्रता से ध्यान लगाया करते थे। एक बार उनकी मित्रता एक राजकुमार से हुई, युवराज कोई राजकुमार से, और राजकुमार को देखकर उसके रहन सहन चलते फिरते को देखकर उस ब्राह्मण को इच्छा हो गई कि मैं भी एक राजकुमार बनूं। विष्णु का ध्यान छूट गया और राजकुमार बनने की इच्छा बन गई, और इस तरह से वो अच्छे उच्च स्तर के विष्णु भक्त ब्राह्मण थे, पर वहां से वो इस तरह से इच्छा हो गई और वो ध्रुव महाराज हुए। विष्णु पुराण में इसका वर्णन है।
तो इस तरह से ध्रुव महाराज की परिस्थिति ऐसे हो गई, और वो भी अपराध था क्योंकि एक महान व्यक्ति थे वो, और वहां से जैसा सुरुचि का शब्द हुए वापस वो अपने परिस्थिति में आ गए वो। तो इस तरह से तुम्हारी जो इच्छा थी बदला लेने की वो भी अपने आप पूर्ण हो जाएगी, हालांकि तुम्हारे हृदय में अभी वही भावना नहीं है, पर क्योंकि उस भावना से आए थे वो भी पूर्ण हो जाओगी, हो जाएगी। और इससे पहले कि तुम ध्रुव लोक में जाओगे, ध्रुव लोक तो बहुत दूर समय है, 36,000 साल तक, क्योंकि ये सतयुग की बात है, 36,000 साल तक तुम इस पूरे पृथ्वी के राजा बनोगे। 36,000 साल तक राज्य का भोग करोगे, जहां तुम्हारे तुम वृद्ध अवस्था कभी नहीं आएगी और तुम्हारे इंद्रियां कभी शिथिल नहीं होंगी। यू विल रियली एंजॉय द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर 36,000 ईयर्स। मतलब सारा खुजली पूर्ण हो गया, गाड़ी की इच्छा थी, मर्सिडीज बेंज आ गया, BMW आ गया, नहीं अभी इच्छा नहीं, पर फिर भी ये लो, ये भी ले लो, ये लो चाबी, उसका भी गाड़ी, और कब तक? परमानेंटली तुम्हारा। और बाद में कहते हैं प्रोटेक्शन, बोले 36,000 साल तक बहुत अच्छे यज्ञ करोगे, दान दोगे, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो जाओगे, पर कभी तुम मुझे भूलोगे नहीं। दिस इज प्रोटेक्शन। सिर्फ लालच खुजली करके भेज दिया, नहीं, प्रोटेक्शन, कभी मुझे भूलोगे नहीं। और जैसे इस शरीर की जो अवधि है, आयु जैसे समाप्त होगी, तुरंत तुम ध्रुव लोक में प्रवेश करोगे। ये मेरा आश्वासन है, ये मेरा वरदान है। और इसी शरीर में, जिस शरीर में तुम राज्य कर रहे हो, उसी शरीर से तुम ध्रुव लोक जाओगे, वहां से भगवत धाम, जो सारे लोकों के व्यक्ति उसको नमस्कार करते हैं, और जहां जाने के बाद इस भौतिक संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद हमको लगेगा कि महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हो, वो तो सतयुग में हो गया, इतना तपस्या, हम क्या तपस्या करें, क्या हमें भी ऐसी चीज प्राप्ति हो सकती है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको सांत्वना और आश्वासन देते हुए कहते हैं, विश्वास देते हुए कहते हैं कि वही चीज जो ध्रुव महाराज को सतयुग में इतनी कठोर तपस्या के द्वारा उपलब्ध हुई, आज वही चीज श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हम सबको उपलब्ध है। क्या? सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा, और इस तरह से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। दिस इज अ बेनेडिक्शन। ऑल योर मेटीरियल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड, यू विल बी एबल टू रिमेंबर द लॉर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ, एंड इन दिस वे यू शैल अचीव द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ। क्या चाहिए बोलिए? और हमारी आयु क्या है? सौभाग्यशाली है तो 60-70 साल ठीक ठाक जिएंगे। तो उसके अंदर वही चीज जो ध्रुव महाराज को उतनी कठोर तपस्या, न कोई भविष्य में किया, भविष्य में न करने वाला है, न कभी किया है, ऐसा वही फायदा हमको भी मिल रहा है। इस तरह से भगवान ने वरदान दिए, और तत्पश्चात भगवान वहां से अंतर्धान हुए, ध्रुव महाराज वापस राज्य की ओर चलने लगे। पर जैसे वो चलने लगे, उनके हृदय में तीव्र पश्चाताप हो रहा था, क्या किया मैंने, 36,000 साल तक यहां जीना है मुझे, जिसने एक बार एक उच्च कोटि के स्वाद का आस्वादन कर लिया है, उसको फिर इस संसार की चीजें क्या लेना। पर फिर भी इस तरह से नारद मुनि की कृपा से उन्होंने क्रोध को दृढ़ता में परिवर्तन किया था, भगवान को प्राप्त किया। आज तक किसी ने जो वरदान ऐसा प्राप्त नहीं किया, ऐसे वर प्राप्त किया, पर फिर भी उनके हृदय के अंदर पश्चाताप थी, क्या किया मैंने, खोदा पहाड़ निकली, चूंकि इतना बड़ा तपस्या किया और क्या मांगने की कोशिश थी मेरी। ध्रुव महाराज की इच्छा जो थी बदला लेने की वो पूर्ण हो गई, भौतिक एक बड़ा पद प्राप्त करने की वो भी मिल गई। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं ये सब करने के बावजूद ध्रुव महाराज पश्चाताप कर रहे थे, तो हम क्यों ऐसी चीज मांगे सबसे पहले, किसी से बदला, इसका नाक टूट जाए, इसका सर फूट जाए, हरे कृष्णा 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 आज 32 माला करूंगा ताकि वो मर जाए जल्दी। वो मरेगा आप भी मर जाओगे, इस भौतिक संसार में लटकते रहोगे। ऐसा सब करके क्यों तपस्या करना है हमको? कभी कभी भक्ति लोग इसलिए भी करते हैं, अकाम सर्व काम हो, सब प्रकार की कामना, या ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। पर ध्रुव महाराज पछताए 36,000 साल तक, तो क्यों पछताना चाहते हैं? तो शुरू से कहते भगवान न धनम न जन्म न सुंदरी, फिर ध्रुव महाराज जब वापस आए, जब हम अपने इनको पता चला उत्तानपाद महाराज को, तो बड़े प्रेम से उन्होंने पूरे बड़े प्रोसेशन के साथ, बैंड बाजा के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, अपने सेनापतियों के साथ, अपनी सेना के साथ, ब्राह्मणों के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए रथ का सुंदर सजा धजा कर स्वागत करने उस पूर के अंत तक गए। और जैसे ध्रुव महाराज ने ध्रुव महाराज को देखा, तुरंत उन्होंने झुककर बड़े प्रेम से ध्रुव को गले से लगाया। 5 साल के बच्चे, 5.5 साल के भी, 6 महीना तपस्या करके आए, प्रेम से गले लगा। पर अब उन्होंने देखा कि ध्रुव ऐसा नहीं रहा, वो एक मामूली बच्चा नहीं रहा, उसके अंदर वो तेज थी। पर फिर भी उन्होंने गले लगाया, हिचकिचा रहे थे वो, उनके अंदर बहुत दुख हो रहा था कि मैंने इतना इसको तकलीफ दिया, बेचारा जंगल में जाके रह रहा था, राजकुमार कहां, राजकुमार कहां जाके जंगल में रहना। गले लगाए, आंखों से अश्रु की धारा से नहला दिए। फिर ध्रुव महाराज ने माता सुरुचि के पास गए और उनको झुक के प्रणाम किया। उनके अंदर कोई वो बदला लेने की भावना नहीं थी अभी, सब कुछ नष्ट हो गया था भगवान के दर्शन मात्र से और तपस्या से, शुद्ध वैष्णव तपस्या जो नारद मुनि के निर्देशन में किए थे, जिसे दिति के संदर्भ में हम देखते हैं। जब वो तपस्या की, उसके अंदर सारी जो नेगेटिव थॉट्स, ऐसी इच्छाएं थी, सब चली गई। फिर उत्तम से गले लगाए, तत्पश्चात माता सुनीति के पास गए। सुनीति जैसे गले लगाए अपने बच्चे, 6 महीने से बेचारी उसके विरह में, उस बच्चे के विरह में वो कातुरता से राह देख रही थी, अभी आए, सुनीति गले लगाए, उसके स्तन से दूध निकलने लगा और वो आंखों से आश्रु मानो अभिषेक कर रही हो। बहुत ही गर्व हुआ उसे कि अब ये पुत्र वापस आ गया, जिस इच्छा से गया था उस इच्छा को प्राप्त करके आया, हरि को प्रसन्न करके आया। बहुत ही उन्हें माता को गर्व हुआ। और तत्पश्चात कई साल ऐसे चले गए। महाराज उत्तानपाद ने देखा कि ध्रुव की महिमा और ध्रुव की जो प्रभाव है सारे राज्यों में फैल गया है, सब उसे सम्मान देते हैं, सब उनका सुनते हैं, मतलब अब नौजवान हो गया है। जब उन्होंने देखा कि अभी योग्य उम्र स्तर उम्र को प्राप्त किया है, तो उन्होंने मंत्री से चर्चा की, लोगों से चर्चा की और तब ध्रुव महाराज को आसन पर बैठाए और वो वानप्रस्थ ग्रहण किए, वन में प्रवेश किए अपनी जीवन की, मतलब आत्म साक्षात्कार करने के लिए। एक आदर्श उदाहरण देकर देते हुए वो चले गए। और इस तरह से वो अध्याय समाप्त हुआ। अब दूसरा अध्याय, ध्रुव महाराज थोड़े दिन पश्चात विश्व के सम्राट थे, उन्होंने विवाह किया। महाराज उत्तानपाद देखे अभी विवाह का समय नहीं है, मेरा उम्र हो रहा है, इसका बेटा, उसका शादी होगा, सबके लिए वेट नहीं किया, उन्होंने देखा मेरा उम्र हो रहा है, मेरा काम मुझे करना है, सौंप दिया हूं, निकल गए वहां से। प्रभुपाद जी कहते हैं कि समटाइम्स यू हैव टू सेट प्रॉपर प्रायोरिटीज इन लाइफ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, एनीथिंग एल्स कैन वेट। और एनीथिंग एल्स कैन बी निग्लेक्टेड, बोले वो सब चलेगा, वी कांट निग्लेक्ट दिस ड्यूटी। वेट नहीं कर सकते, वो हो जाने दो, ये हो जाने दो, उसका बच्चा हो जाने दो, उसको बड़ा हो जाने दो, फिर उसके बाद में जाऊंगा, नहीं, वो निकल पड़े जानते हुए कि हरि का आश्रय लिया है सब हो जाएगा। ध्रुव महाराज ने दो विवाह की, एक भ्रमी नाम के जो प्रजापति शिशुमार की पुत्री थी, जिसके द्वारा कल्प और वत्सर नाम के दो पुत्र हुए, और दूसरे विवाह इला वायुदेवी, वायुदेव के पुत्री, जिसके द्वारा उत्कल और एक बहुत ही सुंदर पुत्री उपलब्ध हुई। हालांकि उत्तानपाद बड़े प्रेम कर रहे थे, वो वानप्रस्थ निकल पड़े थे। इसके थोड़े दिन बाद राज्य सब चल रहा था, एक दिन उत्तम जंगल में गया हिमालय शिकार खेलने, और वहां एक यक्ष ने उसे मार दिया। He was killed by a yaksha. यक्ष मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं they are the Tibetans according to the description, हिमालय पर्वत पे लोग रहते हैं, और ये अनुयायी हैं इनके, कुबेर के अनुयायी। तो एक यक्ष ने उन पर प्रहार किया और उनको मार दिया। जब सुरुचि को पता लगा ये पागल सी हो गई और वो भागने लगी और जंगल एक दावाग्नि में वो फंस गई और वो भी उसने भी अपना शरीर त्याग दिया। पर जब ये खबर ध्रुव महाराज को मिली तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए, इंटेंस एंगर, बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोध में उन्होंने न केवल सेना वेना किसी से कोई इच्छा नहीं की, सीधा एक रथ पे सवार हो गए और खुद सारे धनुष बाण लेकर अस्त्र शस्त्र लेकर अकेले हिमालय की ओर चढ़ पड़े गए। और जाने के बाद जैसे वो अलकापुरी, यक्षों की राजधानी अलकापुरी, जैसे वहां पहुंचे उन्होंने अपना शंख बजाया, शंख ऐसे बजाया कि सारी स्त्रियां अलकापुरी की कांपने लगी, और ये देखकर वहां के जितने सारे सैनिक लोग थे सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए कि कोई बहुत बड़ा भयंकर आक्रमण होने वाला है। और वो आए, भागवत में वर्णन है 130,000 यक्ष आक्रमण किए ध्रुव महाराज के ऊपर। ध्रुव महाराज ने एक एक समय में तीन तीन बाण छोड़ने लगे और वो लोग छह बाण छोड़ने लगे, पर देखते देखते ध्रुव महाराज ने अपनी कला से कई यक्षों को मार डाला, हजारों हजारों यक्षों को मार डाला। देखते देखते कुछ चंद बच गए इधर उधर, सबके सब भाग पड़े। ध्रुव महाराज ने इच्छा की अब मैं अलकापुरी देखना चाहता हूं, पर उन्हें मालूम था कि यक्ष लोग मायावी जैसे होते हैं, मतलब इनके साथ बहुत सारी मिस्टिक पावर, क्या कहते हैं, सिद्धि होती है, यौगिक सिद्धियां होती है, पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है। और जैसे ऐसे सोच रहे थे एकाएक ऐसा धुआं और तूफान आने लगा, और ऐसा मानो सागर के प्रवाह बड़े बड़े आ रहे हो, लहर बह रहे हो, अलग अलग प्रकार की आवाज, आसमान में बादल छा गए और वहां से खून, ब्लड, पस, यूरिन, फ्लैश, डेड बॉडीज ऐसे सब गिरने लगे, और उधर से सब प्रकार के जंगली जानवर आक्रमण करने लगे, हर प्रकार के जीव और हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र ऊपर से आसमान से गिरने लगे, और लाखों ऐसे यक्ष फिर से आने लगे, समुद्र जैसे लहरें आने लगी। ध्रुव महाराज वॉज टोटली बिविल्डर्ड, ऐसे लग रहा था मानो यक्षों के सागर में ध्रुव महाराज की जो चंद्रमा है वो डूब रही है। देवता गण और ऋषिगण जो देख रहे थे वो भी हाय हाय करने लगे, बोले क्या हो गया ये, सब प्रार्थना करने लगे। ऋषिगण आसमान में खड़े होकर ध्रुव महाराज को कहने लगे हरि नाम का स्मरण करो, यह नामधेय, नाम का स्मरण करो, नाम का आश्रय लो, जिसके द्वारा यह माया दूर हो सकती है, ये योग सिद्धि की जो माया है इन लोगों की, यक्षों की। और ध्रुव महाराज ने तुरंत नाम स्मरण किया, और नाम स्मरण करके उन्होंने एक बाण निकाला और विष्णु मंत्र का जप किया, और उसके बाद उस
धनुष में लगाए, जैसे लगाए सारा जो इल्यूजरी इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट जो था, इट वॉज एक्चुअल बट इट वुड हैव किल्ड ध्रुवा, जैसा ऐसे तुरंत सब हट गया और ध्रुव महाराज उस तीर से ऐसे सोने के तीर पंख वाले निकलने लगे, हजारों हजारों तीर निकलने लगे जो सब यक्षों को नष्ट करने लगे। देखते देखते यक्ष सब मरने लगे, मतलब पूरी उनकी जो क्या बोलते हैं वंश ही नाश होने जैसा होने को आया। और जैसे मानो पहाड़ के ऊपर अच्छी बारिश हुई हो तो पहाड़ जैसे चिकना हो जाता है, चमकने लगता है, इस तरह से यक्षों के इस तरह से प्रवाह जो सारे अस्त्र शस्त्र से, फिर ध्रुव महाराज चमक कर बाहर आए और सबका संहार करने लगे। पर देखते 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 न केवल हजारों, एक लाख से ऊपर यक्ष मारे गए। और तब स्वयंभू मनु को आना पड़ा, बोले क्या कर रहे हो भाई, यक्षों को सब खत्म कर दे, क्योंकि स्वयंभू प्रजापति हैं, प्रजापति का काम है प्रजा उत्पन्न करना, ये तो प्रजा को सब संहार कर दे रहे, अरे एक मारा तो सबको खत्म। हमने देखा यहां एक प्रधानमंत्री मारे गए तो उसको मारने वाले को जात के जितने सबको मारने लगे एक बार। इस तरह से एक यक्ष ने मारा ध्रुव के भाई को तो उन्होंने निश्चय किया पूरे यंश यक्ष के जो वंशज हैं वो वंश का ही मैं नाश कर दूंगा। ये अतिरोष अति क्रोध हो गया। ये जैसे परीक्षित महाराज के मृत्यु के बाद जन्मेजय उनका पुत्र एक सर्प यज्ञ किया और बोले सारे सांप जितने भी ब्रह्मांड में सब आके गिरे। बोले नहीं नहीं एक सांप तो तक्षक इंद्र का से, वो इंद्र भी आके गिरे। ब्राह्मण को बोले ये नाम जप करो, इंद्र भी आके गिरने लगा। अरे भाई भैया हद होता है भाई, एक तक्षक मारो तो पूरे परिवार को मारो ठीक है, वो पूरे वंश को खत्म कर रहे हो। भगवान ने सृष्टि की है, सांप को कुछ उपयोग किया उसके लिए कुछ देर सम उनका भी कुछ उद्देश्य है। अतिरोष यहां देखते हैं, पहले भी ध्रुव महाराज को क्रोध था और अभी भी ध्रुव महाराज को क्रोध आया। क्या क्रोध सही था या गलत था, यह प्रश्न उठता है। क्रोध अगर नहीं करते, चुपचाप रहते, उत्तम मर गया ठीक है उत्तम, इसका मतलब वो ईर्ष्या कर रहे हैं, भाई मर गया अच्छा हो गया, मेरा राज्य अभी सीट कंफर्म हो गया। और एक राजा होने के नाते उनका कर्तव्य है कि प्रजा के ऊपर संहार हो रहा है तो उनको खत्म करना चाहिए। जो भी व्यक्ति जो तकलीफ दिया है उसको तुरंत योग्य सजा मिलना चाहिए। पर जब वो अति कब हुआ, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में समझाते हैं, मनु आके समझाते हैं कब अति होता है। कोई भी वायलेंस या हिंसा कब अति होती है, हिंसा छूट है कब, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बना रखने के लिए हिंसा जरूरी है, और पर बिना कारण के नहीं होना चाहिए। और कब यह गलत है हिंसा, जब अननेसेसरीली बिना जरूरत के, जरूरत के बिना ही अगर हिंसा हो, दैट इज कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। कत्तल खाना बनाकर लाखों पशुओं को मारा जाए, दैट इज अननेसेसरी। तुमको खाना है, तुम एक मुर्गी को मारो तुम खाओ, तुम अपने हाथ से काटो देखो कितना खून निकल रहा है। पर कत्तल खाना खोल दिया जहां मशीन के अंदर लाखों लाखों ऐसे जा रहे हैं, हेल्पलेस इनोसेंट एनिमल्स आर बीइंग क्रूली स्लॉटर्ड, रिएक्शन इज बाउंड टू कम, पाप आएगा और हमारा भी स्लॉटर हो जाएगा। दूसरा, टू ऑफेंसलेस पीपल, जिसने अपराध नहीं किया, अरे जिसने अपराध किया उसको दंड दो ठीक है, पर उसने किया तो उसके बगल में जितने लोग खड़े थे सबको मार डालो, ये अति हो गया। कुछ नहीं, अपराधहीन है, वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं वहां। टूडेज वॉरफेयर इज लाइक दैट। पहले क्षत्रिय लोग एक जगह जाते थे, लड़के आते थे, ऐसा नहीं, अभी एक बॉम्ब डाल दिया, कौन मर गया, बच्चे मर गए, क्या लेना देना उनको। आजकल का लड़ाई भी ऐसा है, विमान से आए बॉम्ब डाल के चले गए, पूरा शहर का नाश कर दिया।
ऑफेंसलेस भी हो. दिस इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. इससे पहले कि मैं माइक किधर है,
I will do some non-conventional Bhagavatam class. अरे भागवत में जाना से तो उठते नहीं, अभी उठना जरूरी. ध्रुव महाराज अति रोष दिखाए. कल हम चर्चा करेंगे कि स्वयंभू मनु ने उन्हें समझाया, तीन अलग अलग कारण दिए. ध्रुव महाराज का क्रोध करना सही था या नहीं था? अति था. और उसे हम क्या सीख सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं. जब मैं लंदन गया था पिछले साल, तो वहां हमारे सचिनंदन महाराज भक्तिवनाथ मैनर जहां भोपाल जी गए थे, वहां उन्होंने प्रवचन दिया और वो कह रहे थे 5 साल की उम्र में जब भक्त नहीं थे उस समय भी ध्रुव महाराज ने क्रोध का प्रदर्शन किया. अति रोष, इतना क्रोध. नारद मुनि बोले छोड़ दो, बोले नारायण करके रहूंगा मैं. और अभी भी हम देखते हैं शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त. और उत्तम मारा गया और उसके लिए बदला लेने के लिए वो गए और योग्य सजा दिए, अति रोष हो गया और स्वयंभू मनु को आके समझाना पड़ा उन्हें, ये बहुत हो गया, सो मच यू आर गोइंग ओवर बोर्ड, चलो से ज्यादा कर बैठा. तो क्या ध्रुव महाराज की गलती थी, कैसा समझे इसको? तो सचिनंदन महाराज ने हमें एक ग्राफ बनाए और बोले हम भक्ति में आए, अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी का 10 साल हो गया, किसी का 15 साल हो गया, कैसे प्रगति होता है? वो बोले ऐसे साधु श्रद्धा तथा साधु संग भोजन क्रिया निष्ठा रुचि भाव प्रेम, दिस इज टाइम और इधर एडवांसमेंट, एक्स एक्सिस टाइम. जैसे जैसे समय जा रहा है प्रगति हो रही है कि नहीं, है कि नहीं? हम सब हाँ बोले. बोले नहीं, ऐसा कभी होता है कि आधा श्रद्धा आधा साल में भजन भजन करके? ऐसा नहीं कि 10-10 साल की बात करते, अभी भी काम आसमान करते हैं. अरे 10 साल पहले ऐसा नहीं करते, ज्यादा ही हो गया. पहले तो क्रोध नहीं आता था, अभी तो ऐसा क्रोध आता है छोटे छोटे ऊपर भी मार डालने का दिल करता है. हाँ हाँ बोले कह रहे ऐसा होता ही नहीं, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा इसी जैसा. बोले हाँ, बोले नहीं ऐसा भी नहीं होता. फिर बोले कैसा महाराज आप ही बताओ. दो बार हाँ बोले आप धक्का दिए. तब उन्होंने वही चीज आता है, पर अब सूक्ष्म रूप से आता है. सूक्ष्म सूक्ष्म से कैसे पूजा नाम प्रतिष्ठा करने के रूप में, वो भी वही काम है। पहले जैसे महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन किया, पहले थोड़ा थोड़ा धूल निकाल दिया, फिर छोटे छोटे क्रैक में से धूल निकाल दिया। ठाकुर से तात्पर्य निकलते पहले स्थूल और बाद में सूक्ष्म। तो इस तरह से ध्रुव महाराज के चीज में देखते हैं, पहले स्थूल एक मतलब ग्रॉस एंगर, ऐसे ऐसा क्यों बोला, अगेन ही गॉट एंग्री एंड समथिंग आल्सो वेंट टू द बोर्ड। ऐसा नहीं है पूरा चला जाएगा, बट बिकॉज ही वॉज प्रोटेक्टेड एंड गिवन इंस्ट्रक्शन बाय स्वयं भगवान, ही वॉज प्रोटेक्टेड। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज बताया, उन्होंने कहा कि देखिए एक छोटा सा क्या होते पौधा, ये छोटा जड़ है, ये पौधा सामने जाके एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। खड़ा रहेगा नहीं, उस समय खड़ा था ना, आगे भी खड़ा होना चाहिए। अरे नहीं, इस समय के लिए ठीक था, इतना बड़ा पेड़ होने के बाद ये जड़ भी जितना ऊपर गया है उतना नीचे और उतना, तो इस तरह से तुम ऊपर जा रहे हो तो नीचे भी इतना बड़ा होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। पहले पहले इस मार्ग यही माना करते, वेरी गुड शाबाश, दो साल के बाद अभी कितना करते, एक माना, एक माना मूर्ख, अभी भी एक माना करा। बच्चों से कल ने जैसे कहा, कल बच्चे से कौन से क्लास में बैठा, चौथी में, वेरी गुड, चार साल के बाद कौन सा चौथी में, अभी इस तरह से वो ही प्रकार के अनर्थ जो उस समय हम विभाग करा सकते थे आज वो नहीं कर सकते। उस कभी कभी हम देखते हैं बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े सन्यासी हमारे संस्थान में, कोई भी संस्था में देखते हैं, सडनली दे हैव ए डिफिकल्टी एंड यू वॉन्टर अरे इसको बड़ा तकलीफ हो गए। अगर बड़े बड़े जिम्मेदारी बड़ी बड़ी सेवा ले लेंगे और साथ साथ में जड़ जो है जो हमारी साधना है श्रवणम और कीर्तन वो भी अगर थोड़ी गहराई में नहीं जाएगी तो ये बोझा बन जाएगा, वो सेवा बोझा बन जाएगा, उसमें सिर्फ गलती ढूंढने लगेंगे, कारण ढूंढेंगे, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, कोई भी चीज वो बोझा बन जाएगा। क्यों ऐसा देखता है, रस नहीं मिलेगा वो सेवा, सेवा में रस होना चाहिए, भगवान से अभिन्न है वो सेवा, ऐसा कैसा इतना सेवा कर रहे हैं पर उसमें रस नहीं है, बोझा कैसे बन गया, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं। तो इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे किस तरह से स्वयंभू उन्होंने इनको ध्रुव महाराज को समझाया, एक बहुत ही सुंदर प्रिंसिपल के द्वारा उन्होंने उनको समझाया कि किस तरह से तुम इस परिस्थिति को देखो। ठीक है, तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो, तुम उसको मार रहे हो, पर अतिरोष नहीं होने दो। तो हमारी सेवा में कभी कभी हमको क्रोध करना पड़ता है, कभी कभी वी हैव टू बी ग्रीडी अबाउट गेटिंग थिंग्स डन, पर कब वो अति नहीं हो जाना चाहिए, कभी वो भौतिक नहीं हो जाना चाहिए, इट इज नॉट एन ईगोइस्टिक एंडेवर। अभी उनका ईगो आ गया, इसे मैं पूरा वंश मैं खत्म करूंगा, क्या भगवान की ये इच्छा है, भगवान की इच्छा नहीं, अभी आपका है आपका जो योजना आ गया। फिर स्वयं भगवान को आगे कहना पड़ता है, नहीं अभी जो कर रहे हो पहले तुमने जो किया वो भगवान को प्रसन्न किया, क्योंकि कर्तव्य के रूप में जो करना है आदर्श रूप एक राजा के रूप में तुमने किया, अब जो कर रहे हो नाउ दिस इज मोटिवेटेड बाय योर फॉल्स फॉल्स एम्बिशन आकांक्षा, कैसा कर सकते मेरे इस पे मेरे भाई को इन्होंने कैसा मार। तो इस तरह से बहुत सुंदर से समझाते हैं, कल उसको विस्तृत रूप से समझाएंगे, पर मुख्य बात यह है कि हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, जब महाप्रभु ने दिखाया गोपीचंद महाजन के द्वारा कि ये साधना जो है जैसे 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 हम प्रगति करते जाते हैं, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डायनेमिक, आध्यात्मिक चीज जो डायनेमिक है, या ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं रह सकता। अगर ऐसा भी रहा तो भी उसका मतलब कोई गड़बड़ी जैसा चौथी उसके बाद चौथी 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 में क्यों पांचवी साल में। तो इस तरह से हम देखते हैं ऐसे भक्तों की जीवन भी आके, पर क्योंकि ही वॉज हम्बल एंड ही रिसीव द इंस्ट्रक्शन रिसेप्टिव टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्वयं भूमि, बड़े नम्रता पूर्वक उन्होंने सुना स्वयं भूमि ने समझाया और समझिए, हालांकि बड़े क्रोधी थे क्रोध में थे, फिर भी उन्होंने समझाया बद की अरे ऐसा ऐसा तुरंत उन्होंने रोका और वहां से वापस आए। और कल यही चलता करते कि किस प्रकार बाद में वो राज्य किए और अंत में बद्रिकाश्रम गए और वहां से सीधे ध्रुव लोग जो भगवत धाम से भिन्न है वहां पधारे। इसी जीवन के अंत कल हम उसके ऊपर चलते हरे कृष्ण श्री रूपा।